नमस्कार।
हाँ,
कौन सी?
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की लिखी हुई क्या खाएं, क्यों खाएं और कैसे खाएं।
अच्छा।
हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
बिल्कुल, और इसमें सिर्फ ये नहीं कि पेट कैसे भरे, बल्कि भोजन हमारे मन, हमारे विचार, यहाँ तक कि आध्यात्मिक जीवन पर कैसे असर डालता है, इस पर काफी गहराई से बात की गई है।
ये नजरिया तो अलग है।
हाँ, तो शुरू करते हैं गीता के एक विचार से। उसमें कहा है ना कि आहार भी तीन तरह का होता है।
हाँ हाँ बिल्कुल,
सात्विक, राजसिक और तामसिक।
बस वहीं से आचार्य जी भी बात शुरू करते हैं।
सही।
तो सात्विक भोजन, जैसा गीता में बताया है, वो है जो हमारी आयु, सत्व यानी पवित्रता, बल, आरोग्य और सुख को बढ़ाता है।
अच्छा।
इसमें आते हैं ताजे, रस वाले, हल्के मतलब स्निग्ध और पौष्टिक पदार्थ,
जैसे उदाहरण के तौर पर
जैसे गेहूं, चावल, दूध, घी, ताजे फल, सब्जियां, ये सब। और माना ये जाता है कि इससे विचार पवित्र होते हैं, एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत रहता है।
तो ये सिर्फ मतलब शरीर की बात नहीं है, सीधा मन पे असर है।
बिल्कुल।
और फिर दूसरा राजसिक, उसके बारे में क्या लिखा है?
हाँ, राजसिक भोजन के लिए गीता कहती है कि ये कड़वा, खट्टा, बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत गर्म या तीखा होता है।
अच्छा।
मतलब तेज स्वाद वाला।
हाँ
हाँ, जैसे तेज मिर्च मसाले, तली भुनी चीजें। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें प्याज, लहसुन, यहाँ तक कि चाय कॉफी को भी रखा गया है।
अरे, चाय कॉफी भी?
हाँ, किताब के अनुसार कहा गया है कि ये दुख, शोक और रोग लाने वाला हो सकता है।
ओ।
इससे उत्तेजना, गुस्सा, वासना, मन की चंचलता बढ़ती है, एक तरह से बुद्धि मलिन होती है।
ये तो काफी गंभीर बात है। और तीसरा
तामसिक, तामसिक आहार वो तो बिल्कुल अलग है। इसमें आता है बासी, रसहीन, जिसमें कोई सत्व न हो, दुर्गंध वाला, अपवित्र या जूठा खाना। उदाहरण के लिए मांस, मछली, अंडा, शराब या कोई भी बासी पड़ा हुआ भोजन।
और इसका असर?
इसका असर बताया गया है आलस्य, मूढ़ता मतलब बुद्धिहीनता, अधर्म की ओर झुकाव और आयु भी कम होती है।
बाप रे।
तो सबसे दिलचस्प बात यही है, जैसा आपने शुरू में कहा
जी।
कि लेखक भोजन को सिर्फ कैलोरी या विटामिन के नजरिए से नहीं देख रहे।
हाँ।
वो इसे सीधे हमारे क्या कहते हैं, मानसिक और आध्यात्मिक संस्कारों से जोड़ रहे हैं।
मतलब खाना सिर्फ ईंधन नहीं है, वो हमारे चरित्र को भी गढ़ता है।
बिल्कुल यही बात
वाह,
है।
ये अब सोचने का एकदम अलग तरीका है। अच्छा, किताब में प्राकृतिक आहार पर भी काफी जोर है, फल सब्जियों पर।
हाँ, बहुत जोर है। फलाहार को तो सबसे उत्तम बताया गया है।
क्यों, ऐसा क्यों?
क्योंकि फल अपने अपने प्राकृतिक रूप में ही पोषक तत्वों, विटामिन, लवणों से भरे होते हैं। ये सोचना भी अजीब लगता है कि प्रकृति ने जो हमें सीधे खाने के लिए दिया, उसे हम पकाकर या प्रोसेस करके उसके असली गुण शायद कम कर देते हैं।
सही बात है।
और इसी वजह से कच्ची सब्जियों मतलब सलाद का महत्व भी बताया है।
अच्छा, सलाद का?
हाँ, क्योंकि पकाने से कई पोषक तत्व वो नष्ट हो जाते हैं। गाजर, मूली, खीरा, टमाटर का सलाद या फिर रायता, इन्हें बहुत फायदेमंद माना गया है।
और दूध?
दूध को तो भूलोक का अमृत कहा है आचार्य जी ने।
अरे वाह।
हाँ, और दूध से बनी चीजें जैसे दही, मट्ठा, खासकर छाछ जिसे तक्र भी कहते हैं, उसके बहुत फायदे गिनाए हैं।
अच्छा।
हाँ, उसमें वो लैक्टिक एसिड वाले जीवाणु होते हैं ना, जो पाचन में मदद करते हैं।
हाँ हाँ सुना है।
अनाज में भी चोकर वाले आटे और साबुत दालों पर जोर है, चावल का मांड भी।
समझ गया। तो खाने की तो बहुत बात हुई, पर पानी का क्या?
पानी, पानी को तो लेखक अमृत तत्व कहते हैं।
अमृत तत्व?
हाँ, कहते हैं शरीर का लगभग दो तिहाई हिस्सा तो पानी ही है। वेदों का भी हवाला दिया है कि पानी रोग नाशक है।
अच्छा।
इसका काम है शरीर की अंदरूनी सफाई करना, जैसे पसीने और मूत्र के जरिए, त्वचा को तर रखना, खून को पतला रखना और कब्ज को दूर करना।
ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन कितना पीना चाहिए और कैसे?
हाँ, ये भी बताया है, दिन में करीब 2.25 लीटर मतलब 2.5 सेर के आसपास, और धीरे धीरे पीना है, गटगट करके नहीं।
अच्छा।
हाँ, खासकर भोजन के करीब आधे घंटे बाद पीना बेहतर है, और सुबह उठते ही पानी पीना, उषापान, वो बहुत फायदेमंद बताया गया है।
और कब नहीं पीना चाहिए?
हाँ, ये भी ध्यान रखना है, भोजन के ठीक पहले या एकदम बाद में नहीं।
ठीक है।
चिकनाई वाली चीजें खाने के बाद तुरंत नहीं, और जब आप कड़ी मेहनत करके आए या तेज धूप से आए तो भी तुरंत पानी पीने से बचने को कहा है।
अच्छा अच्छा, खाने के तरीके पर भी कुछ कहा है किताब में?
हाँ बिल्कुल, सबसे पहली और जरूरी बात खूब चबाकर खाना।
चबाना,
कहते हैं पाचन का आधा काम तो मुंह में ही हो जाता है। जब खाना लार के साथ अच्छी तरह मिलता है तो वो आसानी से पचता है।
ये बात तो हम अक्सर भूल जाते हैं जल्दबाजी में।
हाँ बिल्कुल, और सिर्फ चबाना ही नहीं, आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत मायने रखती है।
अच्छा, वो कैसे?
भोजन करते समय मन एकदम शांत, प्रसन्न और सकारात्मक होना चाहिए। भोजन को पवित्र भाव से ग्रहण करना, जैसे ये सोचना कि यह भोजन अमृत है।
ये तो आध्यात्मिक पहलू हो गया।
हाँ, और एक और बड़ी अनोखी बात बताई है, कुदृष्टि से बचाओ।
कुदृष्टि मतलब?
मतलब ये कि खाना बनाते समय या खाते समय अगर कोई नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति देख रहा है तो उसके विचारों का असर भी भोजन पर पड़ सकता है।
अरे, ऐसा भी होता है?
किताब तो यही कहती है, इसीलिए शांत, एकांत में या फिर अच्छे सकारात्मक माहौल में भोजन करना बेहतर माना गया है।
ये तो बहुत ही अलग बात है।
और मात्रा, कितना खाना चाहिए?
इस पर भी जोर है, अल्पाहार मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं खाना।
हाँ वो तो है, ज्यादा खाने से नींद आती है।
बिल्कुल,
अति भोजन आलस्य लाता है और रोगों को भी न्योता देता है। संयम रखने को कहा है, प्रोटीन, शर्करा सब संतुलित मात्रा में। चीनी को तो लगभग विष जैसा बताया है और उसकी जगह गुड़ को बेहतर माना है।
अच्छा, चीनी को विष?
हाँ, इस किताब के अनुसार। और संक्षेप में कहें तो बाजारू मिठाइयाँ, तली भुनी चीजें और नशे वाली चीजें,
जैसे
शराब, तंबाकू और हाँ फिर से चाय, कॉफी, इनसे पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी गई है।
सिगरेट के नुकसान तो खासतौर पर बताएं।
तो
कुल मिला के देखें पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की ये किताब, क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, ये हमें क्या सिखाती है?
देखिए, इसका सार यही है कि भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है।
हाँ।
ये हमारे तन, मन और यहाँ तक के आत्मा को बनाने वाला, उसे पोषित करने वाला एक बहुत शक्तिशाली साधन है। सात्विक, प्राकृतिक खाना, सही मात्रा में खाना, सही तरीके से खाना और सही मानसिक स्थिति के साथ खाना, ये सब मिलकर ही हमें एक स्वस्थ और संतुलित जीवन दे सकते हैं।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी जो आजकल की आदतें बन गई हैं, वो भागम भाग में खाना, इतना सारा प्रोसेस्ड फूड खाना, खाते समय भी तनाव में रहना।
हाँ,
क्या ये सब अनजाने में हमारे शरीर और मन को उसी तरह नुकसान पहुंचा रही है जैसा आचार्य जी इशारा कर रहे हैं?
ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ भोजन के प्रति अपना नजरिया बदलकर, मतलब उसे सिर्फ जरूरत नहीं एक पवित्र क्रिया समझकर, क्या हम अपनी जिंदगी में कोई बड़ा, कोई सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं?
शायद ला सकते हैं, इस पर सोचना होगा।